चलिए देखते हैं इंशा अल्लाह ताला तफसीर आज की।
हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर। एक एक करके अब लिस्ट और चीजों की दी जा रही है जो हराम की गई। पहले आपको क्या बताया गया, उन चीजों की जिनकी हुर्मत है, उनकी हुर्मत को पामाल ना करना। अब देखा ना मैंने आपको क्या बताया कि ये सूरत एकेडेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए है, कि यानी इसमें डूज एंड डोंट्स हैं, समझने की बातें हैं, कौन सी चीजें हराम है मेरे पर। और ये हम सूरह बकरा में देख चुके हैं। मैता तो मैता, मुर्दार, चाहे खुद मर गया हो चाहे किसी ने मार दिया उसको। मुर्दार की डेफिनेशन सिंपल अगर कर रहे हैं ना, तो वो है जो जिबा ना किया गया, वो मुर्दार ही है। समझ आई बात? तो क्योंकि फिर वरना बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है कि क्या किसको मुर्दार कहेंगे। और लेकिन दो मुर्दार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि वो हलाल है, और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कौन से। अगर हदीस ही नहीं कोई समझता और हदीस को कोई मानता नहीं है, तो मुझे बताएं कभी सी फूड कैसे वो खा सकता है, क्योंकि सी फूड तो सारा ही मुर्दार है। जब आप उसको निकालते हैं तो मछली को जिबा तो नहीं आप करते, वो तो मर ही जाती है तड़प तड़प के, तो फिर वो कैसे खाएंगे। यहाँ पे तो लिखा हुआ मुर्दार जो है वो हराम है। फिर हम हदीस की तरफ आते हैं, उसमें है कि मछली और टिड्डी ये हैं जो मुर्दार हैं, लेकिन मुर्दार भी इनको आप खा सकते हैं। और दम, दम खून, खून कौन सा, दमे मस्फूह यानी बहता हुआ खून। जब आप जानवर को जिबा करती हैं तो उस वक्त वो जो खून निकलता है एकदम निकल के आता है वो, ये नहीं है कि उसके बाद जो गोश्त पे लगा रह जाता है। हम कभी गोश्त धोते हैं तो कितना खून निकल रहा होता है, तो वो वाला इसमें नहीं है। मगर जो उस वक्त बह के निकला एकदम जोश के साथ निकलता है, वो तो खून अगर कपड़ों पे भी लग जाए तो निजासत है, उसमें नहीं आप नमाज पढ़ सकते। ठीक है, बात को समझे, तो वो खून हराम है। इसी तरह बाज दफा लोग ऐसे करते हैं कि वो जानवर को, जिंदा जानवर के अंदर पोक करके ना, अस्तग़फिरुल्लाह, इसको भी एक डेलिकेसी समझा जाता है कई जगहों पे, तो वो वहीं से उसका गर्म खून निकाल के तो पीते हैं। और अरब में भी इसको बड़ी वो समझा जाता था, बड़ी एक डिश समझा जाता था, कि वो खून की ना अलग एक पार्टी होती थी, कि वो उसके खून पीते थे वहां पे जानवरों के। तो इसको इस्लाम ने हराम करार दे दिया। सिर्फ दो हैं जो खून आप खा सकते हैं, वो कलेजी और तिली। ये भी जमे हुए खून होते हैं ना, कलेजी भी जमा हुआ खून होती है, लेकिन ये हलाल है। व लहमुल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त। अब गोश्त का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसकी बोटी हराम है, बाकी हड्डी यूज कर लो, उसकी उसकी चर्बी यूज कर लो, या उसकी स्किन यूज कर लो। जो हराम जानवर हैं जिनका आप गोश्त नहीं खा सकते, उनका चमड़ा यानी उनकी जो स्किन है उसकी प्रोडक्ट्स भी नहीं आप यूज कर सकते। यानी इसकी पिग स्किन हो गया, स्नेक स्किन हो गई, या ये टाइगर स्किन हो गई, या लूमड़ी की, फॉक्स की स्किन के कई चीजें मिलती हैं। अगर वो ऐसे नहीं कि एक फेक वैसे ही बना के उसका डिजाइन बनाया होता है, वो अलग बात है, वो नहीं बात हो रही। वो जो प्योर वाकई जो लूमड़ी की, फॉक्स की स्किन की चीजें होती है ना, कभी बैग होते हैं, कभी जैकेट, कभी जूते, या इस तरह की टोपियां बनाई होती हैं, ये अलाउड नहीं है हमें इस्तेमाल करना, क्योंकि ये जानवर जो खा नहीं आप सकते, उनकी आप चमड़ा भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, बात समझ आ गई। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिह, और जो पुकारा गया हो वास्ते गैर अल्लाह के, गैर अल्लाह के वास्ते पुकारे जाने का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि ऊंची आवाज में पुकारना। तो मतलब क्या है कि यानी किसी के लिए जिबा किया जाना, जो जैसे अल्लाह अल्लाह ताला के नाम के अलावा किसी के नाम पर जिबा किया गया हो, या बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर कहा जिबा करते हुए, वह बिस्मिल्ली रसूलिल्लाह भी कह दिया, बिस्मि रसूलिल्लाह भी कह दिया, आपने अल्लाह का नाम भी ले लिया और रसूल का नाम भी ले लिया, किसी और का नाम नहीं साथ ले सकते। ये नहीं है कि सिर्फ कि अल्लाह ताला का नाम के अलावा किसी का नाम लिया। नंबर टू ये भी है कि अल्लाह का नाम लिया और साथ किसी और का भी ले लिया, वो भी हराम है। नंबर थ्री, अल्लाह का नाम नहीं लिया, किसी का भी नहीं लिया, तब क्या हलाल है, तब भी हराम है वो। क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे सूरह अनाम में कि जिन चीजों पे अल्लाह का नाम ना लिया गया हो उनको मत खाओ। तो तीन चीजें हो गई ना, एक वो चीज है जिसमें अल्लाह के नाम के अलावा किसी और का नाम ले लिया, और ये अक्सर क्यों किया जाता है? अक्सर औकात ये इसलिए किया जाता है ताकि किसी का तकर्रुब हासिल हो, किसी की खुशनुदी हासिल हो, कोई हमारे काम बना दे तो उसके नाम के ऊपर जिबा कर देते हैं जान। समझ आई बात? कि ये फलां के नाम पे है। नहीं, मिसाल के तौर पे कोई अगर कहता है कि ये इमाम हुसैन के नाम पे है मैं जिबा कर रहा हूं, तो ये हराम हो गया। ये ऐसे ही हराम है जैसे खनजीर हराम है। कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जानवर को जिबा करे, उनका नाम ले, अगर उनका नाम नहीं भी लेता लेकिन दिल के अंदर नीयत यही है, मुंह से चाहे बिस्मिल्लाही अल्लाह अकबर कहा लेकिन नीयत यही है कि फलां की खुशनुदी हासिल हो, तब भी वो हराम है। समझ आई बात? हाँ, ये अलग बात है कि कोई कुछ जानवर को जिबा करता है और उसका गोश्त तकसीम करता है और सोचता है कि ये सदका है, इसका अजर फलां को मिले, या अकीका है तो ये इस बच्चे के लिए तरफ से जानवर दिया जा रहा है, वो एक अलग चीज होती है। वो उसके नाम पे नहीं किया जा रहा, नाम पे करना किसी के अलग है बात। समझ आ गई बात? कि किसी का नाम इसके ऊपर लेना यानी अल्लाह ताला के अलावा, अल्लाह के नाम के साथ, या अल्लाह का नाम ही नहीं लिया, किसी का भी नहीं लिया, सब किस्म के हराम हो गए। ये इंपॉर्टेंट बात है। वल मुनखनिका, तो और जो गला घुट के मरने वाली, यानी कोई जानवर कहीं स्ट्रेंगल हो गया, कहीं फंस गया, उसके गले में रस्सी फंस गई और वो चोक हो गया, मर गया उससे, या फिर मौकूदा या चोट खा के मर गया। जानवर आपस में कभी लड़ रहे होते हैं तो चोट लगी एक को, या किसी और तरह चोट लग गई। अब जैसे आज के वक्त में कोई किसी जानवर को ऐसे मारे, मतलब डंडे से मारा है और वो उससे ही मर गया जानवर, या गर्दन टूट गई उससे मर गया, या मिसाल के तौर पे एक चोट लगी है, ये भी चोट ही हो गई कि शॉक दे दिया उसको, झटका लगा दिया उसको, अब ऐसा शॉक दिया कि वो वहीं मर गया। वल मुतरद्दिया, तू और बुलंदी से गिर के मरने वाला, टीले पे, किसी पहाड़ पे, कोई छत पे चढ़ा हुआ था वहां से गिर गया। वन नती हाथू, यहाँ टक्कर खा के मरने वाला, कोई गाड़ी जा रही थी उसे टक्कर लग गई, और कोई हिरन था या कोई चीज थी, वो देखे उसी वक्त वो मर जाते हैं, तो ये सारी हराम है। वमा अकल सबउ, और जो खा जाएं दरिंदे, मतलब शेर वगैरह ने शिकार किया हुआ, अब वो शिकार में से, तो आप वो देखा होगा आपने डॉक्यूमेंट्रीज में भी दिखाते हैं, वो थोड़ा सा खा के चले जाते हैं, फिर बाद में गिद्ध और जानवर आ जाते हैं, फिर वो जब शेर हट जाता है तो वो खा लेते हैं। तो ऐसा कोई गोश पड़ा हुआ है और जानवर को शेर ने खाया, या किसी भी और दरिंदे ने चीर फाड़ के खा लिया हुआ है और उसका गोश्त बाकी पड़ा हुआ है, तो उसको भी नहीं खा सकते, ठीक है, वो भी हराम है। इल्ला, अब एक्सेप्शन है इसमें। एक्सेप्शन कहां से है? ये मुनखनिका सू से लेके सबू तक एक्सेप्शन। इल्ला मा ज़क्कई तुम, सिवाय इसके जो जिबा कर लिया तुमने, यानी जो गला घुट के मरने के लिए था, अब वो गला घुट गया उसका, लेकिन उसमें थोड़ी सी जान थी, अभी जब आप उस तक पहुंचे तो उसमें जान थी, आपने उसको जिबा कर लिया तो ठीक है। इसी तरह वल मौकूजा, जो चोट खा के मरने वाला है, चोट लगी हुई थी लेकिन अभी मरा नहीं था, या बुलंदी से गिरने वाला, या टक्कर खा के, या जिसको दरिंदे ने चीरा फाड़ा था लेकिन वो मरा नहीं था अभी, ठीक है, तो उसी वक्त आप पहुंच गए और उसके अंदर जान थी तो आपने उसको जिबा कर लिया, ठीक है। अब ये देखें, ये अलग है, इनमें वमा उहिल्ला लिल गैरि ला नहीं आ रहा कि वो भी जो दूसरी जगहों पे, वो तो चाहे जिबा ही क्यों ना ही किया गया, चाहे मैंने आपको बताया ना तरीका वही जिबा करने वाले का, लेकिन वो भी इसके अंदर शामिल है जो अल्लाह का नाम चाहे लिया हुआ है लेकिन नियत किसी और की है, नियत में किसी का किसी को राजी करना, किसी का तकर्रुब हासिल करना, ये है। अब देखें इसमें माँ का लफ्ज आया है, माँ का, वह माँ उहिल्ला ली गैरि ला, और जो भी का मतलब सिर्फ जानवर नहीं, जो भी, चाहे वो खाने की कोई भी चीज हो, हलवा है, पूरियां हैं, खीर है, दही और ऐसी चीजें हैं जो दूसरों के नामों से मशहूर की जा रही हैं। आप के सामने है इमाम जाफर के कुंडे, अब किसके नाम से वो मशहूर हुए हैं? इसी तरह आप दिवाली की मिठाई है वो किसके नाम से मशहूर है? वो उनके बुत के नाम से मशहूर की गई है, उसके नाम की है ना। वो वैसे क्यों नहीं आपको किसी और दिन मिठाई दे दें, लेकिन वो अपने कहते हैं ये हमारी दिवाली की मिठाई है, इसलिए किसी और के नाम पे पुकारा जा। कोई भी चीज खाने की किसी और की खुशनुदी के लिए वो बांटी जा रही है, दी जा रही है। तो अब क्या है, इमाम जाफर के कुंडे भी क्या है या वो दिवाली की मिठाई भी क्या है? किसी और की खुशनुदी है ना उसमें, तो ये फिर वो उस चीज को हराम कर देता है। अल्लाह ताला ने ये सब चीजें हमारे लिए बनाई हैं और वो ही इस चीज का हकदार है कि उसका नाम लिया जाए, ना कि दूसरों के नाम दे लेके और उनके नामों की कुर्बानियां या नजरे नियाजें या इस तरह की चीज की जाए। ठीक, बात समझ आई? अच्छा, खंजीर का भी एक मैं बात आपको कह दूं कि खंजीर की भी लोग आज ये, अल्लाह ताला हमें माफ करे हमारे लोगों को भी, क्या इनकी अकलों को हो गया कि वो कहते हैं कि नहीं जी वो खंजीर तो ऐसा था, अब भरा खंजीर में और बकरी में क्या फर्क है, वो भी चार टांगों वाली, वो भी चार टांगों वाला, और इतने क्यूट होते हैं, इतने ऐसे होते हैं और साफ सुथरे हैं। अब ये तो पहले जमाने के होंगे जो गंदे होंगे, आज तो इतने अच्छे साफ सुथरे। हालांकि अगर देखें इन खंजीरों को, अगर आप इनके ऊपर थोड़ा रिसर्च करके देखें तो ये समझ लें, पता है वो काम करते हैं जो वैक्यूम का काम होता है। आपके घर में वैक्यूम का क्या काम होता है? गंदगी को साफ करना, गंदगी उठाना, ये अपने अंदर गंदगी उठाते। अल्लाह ने इनको एक और काम के लिए बनाया, खाने के लिए नहीं उनको बनाया। वो एक गार्बेज बिन है जिसमें गार्बेज सारा जाता जाता है। अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया। अगर हमें यार ये बात नहीं भी पता हो तो तब भी हमारे लिए तो इतना ही काफी है कि अल्लाह ताला का हुक्म। अब वो चाहे साफ सुथरा है नहीं है, क्या भी है, वो सोने का भी बन जाए, हमारे लिए वो हराम ही है क्योंकि हमें हमारे रब ने हुक्म दे दिया। लेकिन ये तो निजस जानवर है, नापाक जानवर है, और शरीयत हर उस चीज से रोकती है जिसमें नापाकी है, क्योंकि इंसान जो चीज खाता है उसके असरात होते हैं उसके ऊपर, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर, उसके किरदार पे, उसकी इबादात पे, उसके अमल पे। और जो जो चीज खाता है उसकी बड़ी मुशाबहत है उस खाने, उस चीज के साथ जो उसने खाई है। आप देखें ये जानवर के बारे में ये आता है कि ये सबसे ज्यादा बेहया जानवर है। किसी ने इसको देखा भी कि ये किस तरह, उन्होंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की कि देखूं तो सही कि ये कैसा है। तो उन्होंने कहा, मैं एक फार्म पे गया, वहां पे जाके मैंने देखा कि ये वाकई क्या इस तरह का है। तो उन्होंने कहा कि जो इसका मेल थे ना, मेल पिग्स, वो कभी किसी फीमेल के पास जाते थे, कभी किसी के पास जाते थे, हर एक के साथ वो मेटिंग करते थे और उसके बाद दूसरे मेल्स कुछ भी नहीं कहते थे। आप देखते हैं मुर्गा हो गया, शेर हो गया, बकरी हो गई, ये अपनी फीमेल को किस तरह वो प्रोटेक्ट करते हैं, लड़ते हैं बाकायदा कि मेरी फीमेल के पास ना दूसरा है, लेकिन इसको नहीं कोई फर्क पड़ता। और आप ये खाने वाले जो हैं उनकी भी आदत और अतवार में यही चीजें देखते हैं ना। फिर हदीस में आता दयूस, जो जन्नत में ही दाखिल नहीं होगा। दयूस का पता है आपको कौन होता है? जो अपनी औरत के बारे में हया ना खाए, जिसको इतनी शर्म ना आए कि मेरी औरत किसी और के साथ अफेयर चला रही है या किसी और के साथ बातें करती है या किसी और के साथ इसका कोई ऐसा ताल्लुक है और उसको इससे कोई फर्क ना पड़े। औरत से मतलब है बीवी है, चाहे बेटी है, चाहे माँ है, चाहे कोई भी है, इट डजंट केयर, और उसको नहीं फर्क पड़ता। बेटी बेहिजाब फिर रही है, वो बॉयफ्रेंड रख रही है, वो या बीवी कहीं और बातें कर रही है, उसको नहीं इस बात से। ये दयूस है, फरमाया जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो जो ये खाने खाएंगे या इन इन खानों की किसी ना किसी तरह कोई ट्रेसेस उनके खाने में आएंगे तो वो भी दयूस ही हो जाएंगे, जैसे ये जानवर दयूस है। तो ये खाने हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं, खाने हमारी आदत के ऊपर इफेक्ट करते हैं, खाने हमें इबादात पे इफेक्ट करते हैं, हमारी नेचर को इफेक्ट करते हैं। आप देखते हैं वो कौमें जो कुत्ते खाती हैं, और अल्लाह ताला माफ करे ये जिन्होंने सांप खाए और जिन्होंने ये चमगादड़ें खाई, उसके बाद दुनिया भुगत रही है उनकी इन गंदी आदत को, पूरी दुनिया भुगत रही है। ऐसी बीमारियों ने जन्म लिया कि जिन जो बीमारियां ना हमारे बाप दादा ने कभी सुनी ना उनको कभी कोई जानता था। दुनिया हैरान है कि ये बीमारी है क्या, वो समझ ही नहीं पा रहे कि है क्या चीज। तो ये ऐसे ही नहीं होता। अल्लाह ताला की देखें इतनी हिकमत है ना सब चीजों के अंदर। तो मैं अगर इस बात को बिलीव कर लें कि जो मेरे रब ने फरमाया ना उसके अंदर मेरे लिए खैर ही है और मैंने वही खाना है। अब कोई उसको चाहे कहे ये भाई बड़ा साफ सुथरा हो गया, ये ऐसा जानवर हो गया, तो इट डजंट मैटर। फिर वमा जुबिहा अलन नुसुब, और जो आस्तानों पे जो जिबा किए जाए, अब इसमें और उसमें क्या फर्क है? वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह और वमा जुबिहा अलन नुसुब, इसमें क्या फर्क है दोनों के अंदर? आस्तानों में पहले मैंने आपको बताया कि वो बुतों के पास ना एक जगह रखते थे जहां पे वो स्पेसिफिक वो जगह होती थी, यहां पे आप आके जानवर जिबा करें ताकि इस बुत का तकर्रुब लेने के लिए, ठीक है, इस बुत के जाहिर है उसकी उसकी जगह है वो, जहां पे उसका जो इबादत घर बनाया हुआ है उसके लिए, इबादत खाना बनाया हुआ, उसके पास ही वो जगह होती थी जहां पे जानवर जिबा किए जाते थे। और यहाँ उहिल्ला लिगैरिल्लाह में पुकार की बात है कि किसका नाम पुकारा जाए, जुबिहा अलन नुसुब में जगह की बात है, उस जगह पे लाके चाहे अल्लाह का नाम लेकर और जिबा के तरीके के साथ जिबा किया जाए, लेकिन वो जगह ऐसी है जिस जहां पे मिसाल के तौर पे किसी का तकर्रुब चाहते हैं कि इस फलां बुजुर्ग या बुत या फलां औलिया अल्लाह या ये इनके पास मेरी मुरादें पूरी हो जाएं, ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करा दें, इनसे हमारे कोई काम बन जाएं, तो वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। अगर कोई कोई जानवर लेकर जाता है वहां पे जिबा करता है तो वो जानवर हराम हो जाता है। किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि फलां मुकाम पे मैं कुर्बानी कर सकता हूँ, कि मैंने उसकी कुर्बानी की एक मसलन की मन्नत मानी हुई थी, तो क्या मैं वहां पे कर लूँ, यानी पहले से मानी होगी मन्नत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उस जगह पे कोई बुत था, तो वहां पे कोई बुत है? तो फरमाया नहीं। तो फरमाया जाहिलियत के जमाने में कोई वहां पे ऐसा बुत तो नहीं होता था? फरमाया कि नहीं, उस वक्त भी नहीं होता था। तो फरमाया किसी खास शख्सियत की तरफ निस्बत तो नहीं है उस जगह की, यानी कोई खास ऐसा कोई बंदा कि जिसकी साथ उसकी जगह की निस्बत हो, जिसके यानी वहां पे जाके खास तौर पे जो इसलिए कोई इंसान कर रहा है कि भाई ये इसकी ये जगह है, इसका ये मजार है, या इसकी ये कोई ऐसी जगह है जिसके साथ उसका नाम अटैच है, तो ऐसा तो नहीं कोई चीज? तो फरमाया नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ठीक है, फिर तुम जाके वहां पे जिबा कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप सोचते हैं, मसलन हम में से कोई सोचता है कि भाई देखो वहां पे ना बड़ी ऐसी कच्ची बस्ती है, बहुत गरीब लोग रहते हैं, चलो मैं वहां पे जाके जिबा कर देती हूँ, वहीं पे गोश्त बांट दूंगी, आसानी हो जाएगी, वो एक अलग बात है। लेकिन जब मैं सोचूंगी कि मैं फलां मिजार पे क्यों ना जाके जिबा करूं, तो मेरा मकसद क्या है? उस मिजार पे ही क्या गरीब लोग हैं? असल में मेरा मकसद क्या होता है कि ये जो मिजार वाले हैं इन तक मेरी कोई यानी मेरी एक कोई कबूलियत है, या कोई कोई मेरा काम है वो इनके जरिए हो जाए, इनकी खुशनुदी में पालू, इनकी रजा मुझे मिल जाए, ये मेरे से खुश हो जाए, ये मकसद होता है। ऐसे ही नहीं जाके लोग वहीं पे क्यों देख देते हैं, वहीं पे जाके क्यों खाना तकसीम करते हैं, क्या वजह होती है? असल में उन मिजार वालों को खुश करना होता है ना, गरीब लोगों तो आप कहां भी खाना खिला ले, वहीं जाके क्यों? उस जगह की निस्बत की वजह से फिर वो जानवर हराम हो गया, क्योंकि ये उस जगह पे जाके जिबा किया गया जिस जगह की निस्बत किसी ऐसे इंसान के साथ थी जिससे जिसके नाम से वो मशहूर था और जिसका तकर्रुब हासिल करना चाहते हैं। अब चाहे नाम अल्लाह का ही ले लें, चाहे जिबा भी आपने ठीक तरीके से कर लिया, वो है जानवर हराम ही, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज का जिक्र आता है, एक उससे हटके जो इंसान खाता पीता है ना उससे हटके, मगर वो चीज भी हराम है, इसलिए उसको भी यहां पे और आप अंदाजा करेंगे कि वो किस लेवल की हराम है, क्योंकि यहाँ पे खंजीर की बात आ रही है। अच्छा, आप नोट करें, यहाँ पे शराब की तो बात नहीं आई, तो सारी चीजें एक जगह पे नहीं है, और जगहों पे कुरान पाक में है, सब इसे करना फिर आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये नहीं कहना कि सिर्फ यही चीजें हैं ना हराम, बाकी तो सारी हलाल हैं, तो इसलिए बाकी हम कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसा नहीं। अब क्या चीज है जो आखिरी चीज है? अंत तक तस्तकसिमु बिल अजलाम, कि तुम तकसीम तस्तकसिम, काफ सीन मीम से है। अब इसके दो माने हैं, अब दो माने मैं आपको बताती हूं। देखिए पहला माना क्या है, तकसीम करना। तो तकसीम करना यानी तुम तकसीम करते हो तीरों के जरिए। पहले जमाने में वो तीरों के साथ बड़ी ये इस तरह की चीजें किया करते थे कि मिसाल के तौर पे एक ऊंट 10 लोगों ने मिलके खरीद लिया, अब उसको जिबा किया, तो अब तीर 10 हैं, तीन तीरों पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ और 7 तीरों पे लिखा हुआ है किसी को, मिसाल के तौर पे किसी को 50% मिलेगा, किसी को 10%, किसी को 5%, किसी को इतना मिलेगा, तो उतना ही उसको गोश्त मिलता था और 3 लोगों को कुछ भी नहीं मिलता था। तो ये तकसीम करना अजलाम के जरिए, तीरों के जरिए, ये भी नाजायज है, ये भी हराम है। अब देखें आज तीरों वाला तो चक्कर नहीं चलता, मगर आज और तरीके हैं जिनके जरिए से ये देखा जाता है इसको मिलेगा और इसको नहीं मिलेगा। और इनमें बहुत बड़ी मिसाल एक लॉटरी की है। लॉटरी में भी क्या है, क्यों है लॉटरी हराम? सबने पैसे डाले और एक टिकट लिया, सबने इक्वल पैसे डाले, जैसे वो ऊंट में डाले, सबने ऊंट खरीदा, एक सबने मिलके खरीदा था ना, सबको हिस्सा मिलना चाहिए था, जायज तो यही था। लेकिन हुआ क्या, सिर्फ एक को ही लेके चला गया लॉटरी, सारों के पैसे एक को मिलकर बगैर किसी मेहनत, बगैर किसी कारकर्दगी के, और किस तरह, पर्चियां डाल के। उन्होंने तीर डाले, आपने पर्चियां डालनी, क्या फर्क है? ठीक है, तो इस तरह से करना ये हराम में आता है। अब समझ आ गई कि अब आप देख लें कि कहां पे जिक्र हो रहा है इस चीज का, और लॉटरी में कितनी बड़ी कबाहत है। लॉटरी को अंदर खेलना भी नहीं, हम तो जब हमारी लॉटरी अगर निकल आई तो हम गरीबों में बांट देंगे। भाई जो चीज हराम ही है उसको आप गरीबों में बांटने का क्या बात है? तो ऐसे ही है जैसे हम कहें हम डाका डालेंगे और उसके बाद जो हम डाका डाल के पैसे मिलेंगे ना, वो हम गरीबों में बांट देंगे, तो ये कोई नेकी का काम नहीं है। ऐसी चीज के अंदर ही नहीं जाना जो हराम है। नंबर टू, इसका मतलब क्या है? तस तकसीमु, तुम तलब करो किस्मत, मालूम करो किस्मत का हाल, बिल अजलाम, तीरों के जरिए। जैसे वो लोग करते थे कि एक आदमी के पास तीर होते थे, उसके पास जाके कहते थे भाई ये काम करें कि नहीं करें, एक तीर पे कुछ लिखा हुआ है, एक पे कुछ और लिखा हुआ है, वो कहता था अगर ये वाला यहाँ को हो गया, चला गया, तो फिर ये कर लो, अगर ये, वो तरीके थे उनके एक फाल निकालने के या हाल बयान करने के कि ये काम करें कि ना करें, ये काम हमारे लिए बेहतर है कि नहीं बेहतर। अगर वो निकलता था तीर जिसमें है कि लिखा होता था कि कर लो, तो वो कर लेंगे, और अगर नहीं है तो फिर नहीं करेंगे। तो हम आज देखें कि हमारे तो उनके पास तो तीरों की एक चीज थी ना, हमने तो दुनिया की कोई चीज छोड़ी ही नहीं, तोते से लेके कछुए से लेके पता नहीं क्या क्या चीजें, हंसी भी आती है। और अस्तगफिरुल्लाह, इस उम्मत का क्या हाल हो गया कि यानी एक जगह पे मैंने देखा कि उन्होंने कहा ये जो मैच है, क्रिकेट मैच कौन जीतेगा, ये एक पता नहीं कोई कछुआ है कहीं, वो बताएगा कि किस तरह से, वो अल्लाह बेहतर जानता है वो कैसे करता था, लेकिन उसकी कोई चीज थी जिससे पता चलता था कि ये कौन सी टीम जीतेगी। ओ खुदा का खौफ करो, क्या कह रहे हो? फिर आप देखें ये टैरो कार्ड, हाथों की लकीरें, हॉरोस्कोप, फिर वो जनाब आपका नाम के वो पूरा जायचा बना के आपके पता नहीं क्या नंबर कैलकुलेट करते हैं, क्या उसके नंबर बना के फिर लकीरें लगा के फिर किस किस तरह से मालूमात करते हैं। लोग इतने इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि बाकायदा सुबह उठ के ये हफ्ता मेरा कैसा गुजरेगा उसको जरूर पढ़ना है, और उसमें एक ही घिसी पटी हमेशा बातें लिखी होती हैं, आप सफर ना करें, फलाने दिन ये ना करें, यार ऐसे ना करें, और हम अंधों की तरह उसके ऊपर बिलीव करते हैं। उसको पढ़ना भी हराम है, उसको फॉलो करना भी गलत है, ऐसी मालूमात लेना भी सही नहीं है। ये नजूमियों की दुकानें कैसे चलती हैं बताएं? ये आमिल बाबों की, नजूमियों की, हॉरोस्कोप वालों की, जगह जगह इन्होंने अपने बोर्ड लगाए हुए हैं, तावन हम कर रहे हैं इनके साथ तो चल रही है ना। अगर हर कोई इनका तावन छोड़ दे तो कल को उसको भी कहीं मजदूरी करनी पड़ेगी, उसको भी काम आसान लगता है ना, बैठे बैठे किसी को कुछ बता दो, किसी को कुछ बता दो, चलो उनका भी कारोबार चल गया। और हमारे ईमान तो माशाल्लाह इस पाए के ना, फलाना बाबा ना बड़ा ठीक बताता है, यहाँ पे शादी करें ना करें, ये करें ना करें, वो जाके उससे पूछे। सोचे हम कितने अकीदे में कमजोर हो चुके हैं, ये हमारे हालात हैं। जिब्ता ताकूत में हम पड़ चुके हैं, तस्तकसिमु बिल अजलाम हम करने लगे हैं। यानी बाकायदा इसके ऊपर लोगों को बुलाया जाता है और टीवी पे बिठाया जाता है और पूछा जाता है, जी आप बताएं कि इसका क्या होगा। अरे ये कई प्रोग्राम्स तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर लोग लिख के भेजते हैं, हम सफर करें या नहीं करें, हम ये पढ़ाई करें या नहीं करें, मेरा कब तक शादी का इम्कान है, पता नहीं फलाने के साथ शादी होगी कि नहीं होगी। ये तो बस सारा कुछ फिर इनके हाथों में ही है कि किस्मत के हाल तुम मालूम करो। ये भी हराम है, हराम है उम्मते मुस्लिमा, ये हराम है। फिर क्यों है कि मुसलमान मुल्कों में इनकी दुकान कैसे हो सकती है जिनके कुरान में ये लिखा हो कि ये हराम है, कैसे वहां पे उनकी दुकान चल सकती है? इससे पता चलता है कि हमारी जिहालत की इंतहा क्या है कि हमें यही नहीं पता कि हमारी किताब में क्या लिखा है। और नंबर टू, हमारे अकीदे की कमजोरी कितनी ज्यादा है। और जिनको पता भी है वो फिर इन्हीं चीजों में, आप यहाँ पे बैठ जाएं, अगर मैं, अल्लाह माफ करे मुझे, अगर मैं आज यहाँ पे सिर्फ इतना कहना शुरू कर दूं ना कि मेरे पास ऐसी चीजें हैं कि मैं बता सकती हूँ और ऐसे कुछ उलूम हैं, कुछ वो उसको क्या कहते हैं, कोई स्पिरिचुअल ये कोई वो है, पता नहीं क्या इस तरह की कोई चीज कहते हैं, तो आप हाँ रूहानी, रूहानी इनके पास उलूम है। आप देखिएगा कि यहां पर गाड़ियों की लाइनें लग जाएंगी और पैसे भी बहुत मिलेंगे, और वो भी मतलब छुपा छुपा के मुट्ठियों में दे दे के जाएंगे, चाहे आप कहें भी कि मैंने, मुझे नहीं चाहिए। ये तो बड़ा अच्छा धंधा है ना, बड़ा अच्छा कारोबार है। इसीलिए आज आप देखते हैं कि इतने लोग बैठे हैं क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाली इतनी खलकत है जो अपने मुसलमानों में से है। तो अंत तस्तकसिमु बिल अज़लाम, अगर पास्ट में ये कर चुके हैं तो तौबा इस्तगफार करें, तौबा करें बहुत ज्यादा, क्योंकि खिंजीर को खाने को तो बहुत हराम समझते हैं लेकिन तस्तकसिमु बिल अज़लाम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, तो क्या हुआ इससे? और बाज लोग तो इसको फॉर फन से कहते हैं, जस्ट ओके आपका स्टार कौन सा है, इसका क्या ताल्लुक है स्टार कुछ भी नहीं, मैंने देखना है मैच करता है या नहीं। अच्छा इसीलिए नहीं आप लोगों की बनती क्योंकि आपके स्टार नहीं मैच करते। ये क्या है, सितारे आप हमारी किस्मत के हाल बताएंगे कि हमारी किससे मैचिंग हो सकती है? नहीं, सितारों के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारी किस्मत का इख्तियार रखते हैं। और अगर कुरान पढ़ने वाले इससे ना बाज आए तो फिर तो और ही ज्यादा शर्म की बात है। तो इन चीजों को बताना चाहिए अपने लोगों को भी कि ये हराम है, हराम है। और तब के लिए ये आयत आप हाईलाइट कर लीजिए, और हराम के लिए और कौन सा लफ्ज, ये तो सारों को ही पढ़ना तो आता होगा, हुर्रिमत, हुर्रिमत। ये तो जिसको नहीं भी अरबी आती वो भी समझ सकता है हुर्रिमत का क्या मतलब है। तो बताएं लोगों को कि ये हराम है, मत इस चीज के अंदर पढ़ो। इंसान के साथ जो होना है वो तो हो के ही रहना है, लेकिन आप ये देख लें कि अपना ईमान इंसान गवा देता है। वैलिकुम फिस्क, ये सारे नाफरमानी के काम है, गुनाह के काम है, नेकी का काम नहीं है ये। ये जितनी लिस्ट दे दी गई है ना, गुनाह है। मत जाओ मीजारों पे जाके वहां पे देगें चढ़ाओ, मत दूसरों के नामों के ऊपर तकसीम करो चीजें, मत पुकारो खानों पे और चीजों पे दूसरों के नाम। अल्यौम यइस अल्लदीन कफरू मिन दीनिकुम फला तख्शौहुम वख्शौहुम, आज मायूस हो गए कौन, कफरू, जिन्होंने कुफर किया, किस चीज से मायूस हो गए, मिन दीनिकुम, तुम्हारे दीन से। क्या मतलब दीन से मायूस हो गए, मतलब काफिर मायूस हो गए कि ये कभी इस दीन को मिटा सकेंगे या बदल सकेंगे या कोई डैमेज कर सकेंगे इसको। क्योंकि देखें अल्लाह ताला ने इस दीन को मुकम्मल फरमा दिया, इस दीन की अल्लाह ताला ने प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी ले ली। अब उस जमाने से आज तक देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब से ये आयत उतरी आज तक कितने लोगों ने कोशिशें की, कितने लोगों ने अब वो आप अस्तग़फ़िरुल्लाह, हमें समझ नहीं आती कि कभी कभी हम ऐसी चीजों को भी प्रोमोट कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए। ये देखें ये वाला कुरान, इसके ऊपर ना जाना, इस वेबसाइट पे ना जाना, ये बिल्कुल गलत है, इसको ना फॉलो करना। आपने तो उसको और प्रोमोट कर दिया, वरना तो उन लोगों को कोई जानता ही नहीं। तो कुरान को नए से नए बनाने की, यानी उसको कुरान तो नहीं कहेंगे मगर नए से नए ऐसी बातें बना के और कहना ये कुरान है, इसकी कोई कम नहीं कोशिशें की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से ही लोग शुरू हो गए थे कि हमारे पास वही आती है, लेकिन वो सब मिट गए। देखिए अब ये वो दीन है कि जैसे कोई कहे ना, कोई बिल्डिंग को शूट करता है, शूट करता है, शूट करता है, फिर उसको पता चलता है वो नहीं, ये तो बुलेट प्रूफ है, इसको कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इसी तरह ये दीन है कि इसके ऊपर बहुत लोगों ने कोशिशें की हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको प्रिजर्व किया। तो ये समझते हैं जैसे पिछले अदियान थे वो बदल गए, उनकी किताबें बदल डाली, उनका कुछ भी ओरिजिनल नहीं रहा, कोई भी ओरिजिनल फॉर्म में उनकी चीजें नहीं रहे, तो शायद इसी तरह ये इस दीन का कर सकेंगे? नहीं, इस दीन के साथ ये नहीं काम हो सकता। जब मुसलमान इस दीन पे कायम रहें और इसके साथ कमिटेड हों, तो फिर वो ये नहीं कर सकते। जब वो देखेंगे ना कि ये लोग तो अपने दीन से कितना कमिटेड है, तो जाहिर है उन्होंने उस वक्त भी कोशिश की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी, ओहद में भी, बदर में भी, कैसे इस दीन को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन फिर उनको समझ आ गई कि ये नहीं हो सकता। उनको पता चल गया कि अब हम इनको काफिर नहीं बना सकते। तो मुसलमान का जो अमल होता है ना, जो उसका स्ट्रॉन्ग इस अपने दीन के साथ जो उसकी कमिटमेंट होती है ना, वो दूसरों को मायूस कर देती है कि जी इसको तो बड़ा हम समझाने की कोशिश करते हैं, ये नहीं समझता, तो उनको पता है ये तो बड़ा सख्त है अपने दीन में। तो फला तख्शौहुम वख्शौनी, इनसे मत डरो, मुझसे डरो, यानी उनसे डरने की क्या जरूरत है। कभी इस बुनियाद पे दीन के फैसले ना करें कि लोग क्या कहेंगे, इस बेस के ऊपर अपने डिसाइड ना करें कि मैं ये करूं कि ना करूं, क्योंकि मुझे डर लगता है अगर मैं करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, और मेरे दुश्मन तो बड़े ही स्ट्रांग है, वो मुझे बदनाम ना कर दे। नहीं, फला तख्शौहुम वख्शौनी, उनसे मत डरो। ये खशियत कौन सा डर होता है? किसी की अजमत की वजह से, उसके इल्म की वजह से, उसके मर्तबे की वजह से जो डर होता है। तो हमें बाज दफा लोगों की धाक हमारे दिल में ऐसे बैठी होती है कि उनसे डर लगता है, कि इतनी हम उनको बड़ी चीज शायद समझते हैं। तो उनसे खौफ मत खाओ, अल्लाह से खौफ खाओ कि वो ना नाराज हो। तो वो तो खैर कोशिशें कर करके थक गए हैं। हाँ, तुम अब फिर नाफरमानियां ना करना, तुम डरते ही रहना, कोई ऐसे काम ना करना जो अल्लाह की नाराजगी की हो। लेकिन आज हमारा सारा ब्लेम देखें, हम अपनी जो बदामालियां, उनका ब्लेम किस पे डालते हैं? काफरों पे। जब देखो, जिस तहरीर में देखो, यहूदियों ने ये साजिश कर दी, फलानों ने ये कर दी, हनूद ने हमारे खिलाफ वो कर दिया, ये तो हमें मिटाने पे तुले हुए हैं, ये वेस्ट देखो ये मुसलमानों के खिलाफ ये कर रहा है, ये कर रहा है। याद रखें, अगर आप खुद अल्लाह के दीन के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, कमिटेड हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अल्लादीन अल यौम यईस अल्लादीन कफरू मिन दीनिकुम, वो कभी आपको हटा नहीं सकते। मगर हम इस तरफ आते नहीं है ना, अपने अमल को दुरुस्त करना नहीं, सारी तवज्जो इस पे है कि वो दूसरे हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो दूसरों ने तो ये 1400 साल में इतना किया ही है ना, और वो करते रहेंगे। हमारा काम ये नहीं है कि हम ये देखेंगे वो क्या कर रहे हैं, हम उनकी साजिशों को खोल खोल के लाके निकालें। हमारा काम ये है हम अपने आप को दुरुस्त करें, ठीक है? वो करते रहे हैं और करते रहेंगे। हम अपनी सारी एनर्जी उसी में लगा देते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये सारी बातें क्यों आ रही हैं हलाल हराम की बातों के बाद? इसलिए कि ये बताया जा रहा है कि जहां पे अल्लाह ताला लिमिट्स लगा दे ना, वहां पे रुक जाना है, चलना वही है जहां पे अल्लाह इजाजत दे। लोगों को देख के नहीं चलना, लोगों को देख के रुकना नहीं है। और लोग जब आपको देख लेंगे ना कि ये तो अपने दीन में मजबूत है, तब वो खुद ही आपसे हट जाएंगे, मायूस हो जाएंगे। اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. تین باتیں کہی گئیں آج کے دن. آج کا مطلب یہ نہیں کہ آج, بلکہ جس دن یہ آیت اتری آج کے دن فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین, اکملت کامل پرفیکٹ کر دیا, وہ اتمم تو اور تمام کر دیا, کمپلیٹ کر دی تم پر اپنی نعمت. اپنی نعمت کمپلیٹ کرنے کا مطلب کیا کہ اگر کوئی رہ بھی گئی تھی, کوئی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کہیں کوئی ادیان میں کوئی چیز نہیں بتائی گئی تھی, کوئی کہیں چینجز آ گئیں, کوئی کچھ ہو گیا, اب ساری کمیاں دور ہو گئیں, اس دین پہ آ کے سب کمپلیٹ ہو گیا, پورا وے آف لائف اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اکملت لکم دینکم, دین کیا ہوتا ہے, دین کی ڈیفینیشن کیا ہے, وے آف لائف. اللہ نے تمہارا وے آف لائف تمہیں بتا دیا اور بیوٹیفل کر کے دیا, پرفیکٹ کر دی. دیکھیں ایک ہے اکملتو, ایک ہے اتممتو, کیا فرق ہے دونوں, کیا فرق ہے؟ ایک کا مطلب ہے پرفیکٹ کرنا, ایک کا مطلب ہے کمپلیٹ کرنا. مثلاً ہے کہ آپ کو میں کوئی چیز دیتی ہوں, مثال کے طور پہ آپ کو میں نے اپنی گاڑی دی مثلاً, اب جیسے تھی گاڑی تو ہے, پوری کمپلیٹ گاڑی ہے, اس میں ہر چیز جیسے گاڑی میں ہوتی ہے ویسے ہونی, جیسے ہونی چاہیے ویسے ہے, لیکن اس میں پرفیکشن نہیں ہے. آپ کہتے ہیں اس کے اندر اگر یہ چیز ہوتی نا تو بہتر تھا, اس کے اندر اگر اس طرح کی سیٹ ہوتی تو اچھا تھا, اگر اس کے اندر پاور سٹیرنگ ہوتا تو اچھا تھا, اگر اس کے اندر آٹومیٹک ہوتی تو اچھی تھی. اب ہے تو وہ کمپلیٹ گاڑی لیکن پرفیکشن اس کے اندر ویسی نہیں ہے. اگر اس کے میٹ, اگر اس کی کلر, اگر اس کی یہ چیزیں ہوتی تو یہ پھر واقعی پرفیکٹ ہو جاتی. تو پرفیکشن میں اور کمپلیشن میں ذرا سا ڈفرنس ہے. دین اللہ نے پرفیکٹ بھی کر کے دیا, پرفیکٹ ہو گیا, یعنی اب اس کے اندر کوئی چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ او اگر یہ ایسے ہوتی نا تو پھر یہ دین سب سے اچھا ہوتا. جب کوئی چیز کمال کو پہنچ جاتی ہے نا, کمال کو, اکمل تو کمال کو پہنچ جاتی ہے, بیسٹ ہوتی ہے وہ. اب اس میں گنجائش نہیں ہے کوئی کہ آپ اس کو مزید بہتر کر سکتے تھے, یہ آلریڈی بیسٹ اللہ نے بنا کے دے دیا ہے. اور کمپلیٹ کا مطلب کیا, اب کمپلیٹ چیز ہے, مثال کے طور پہ آپ نے کمپلیٹ کوئی ڈش بنا دی, اب کمپلیٹ ہے وہ, اب آپ کہتے ہیں نہیں میں اور اس میں تھوڑا نمک ڈال دیتی ہوں, تو وہ تو بالکل زہر ہی ہو جائے گی کیونکہ وہ کمپلیٹ ہو چکی تھی, اور تھوڑا اس میں پانی ڈال دیتی ہوں. اب اس میں کوئی گنجائش نہیں, جو چیز کمپلیٹ ہے, مثلا پانی کا گلاس ہے اوپر تک بھرا ہوا ہے, کمپلیٹ ہے, اب اس میں اور پانی ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ تو جو چیز کمپلیٹ ہوتی ہے اس میں گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ اس میں کوئی اضافہ کریں. اب یہ دین کمپلیٹ ہے, اب آپ کو ضرورت نہیں ہے اس میں اضافے کرنے کی. اب یہ میں نے کسی کو خواب آ گیا اس نے اضافہ کر دیا, کسی کو کچھ ہو گیا اس نے اضافہ کر دیا. دیکھیں یہ پہلے بھی ہم نے بات پڑھی ہے نا, کیا نقصان ہوگا اگر دین میں لوگ اضافے کرنے لگے, ہر جنریشن میں اضافہ, مثال کے طور پہ سال میں ہر بندے نے ایک اضافہ کیا جب سے یہ دین چلا تھا, ایک ایک اضافہ کرتا چلا گیا, تو کیا ہوتا؟ آج تک 1400 اضافے تو ہو چکے ہونے تھے, تو آپ کو دین اپنی اصل صورت میں تو نہیں ملنا تھا. ہم کہتے ہیں نا, آیا ہم نے پڑھا تھا نا, لا تغلو فی دینکم, حد سے نہ بڑھو دین میں اپنے. تو جب اضافے ہونے لگتے ہیں دین میں, لوگ حد سے بڑھنے لگتے ہیں, وہ اس کے اندر اور چیزیں ملانے لگتے ہیں, تو اس سے نقصان ہے, اپنی اصل شکل میں وہ چیز نہیں رہ جائے گی جو اوریجنل اللہ کی طرف سے آیا تھا, اوریجنل فارم میں. ہر ایک انسان اوریجنل مانگتا ہے, کاپی کوئی نہیں پسند کرتا. اب ایک کپڑا ہے, آپ کہتے ہیں اوریجنل ملے, کاپیاں اس کی بازار میں جتنی بھی ہوں گی اس کی ویلیو وہ نہیں ہوگی جو اوریجنل کی ہوگی, سمجھ آئی؟ تو اللہ کا دین 1400 صدیوں بعد, 1400 سال بعد بھی اوریجنل فارم میں اس لیے ہے کہ اس کو اللہ نے تمام کر دیا, اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی اضافہ کرے گا تو خود بتائیں آگے 1400 سال بعد کیا حال ہوگا, تو بالکل ہی کچھ اور بن گیا ہوگا, جیسے ان لوگوں کے دین بن گئے. آج آپ دیکھیں گے ان کے دینوں کا تو کوئی حلیہ حال ہی نہیں رہ گیا. तो ये इस्लाम के साथ नहीं हो सकता। इसीलिए बिदत का इतना बुरा अंजाम है कि जहन्नुम है उसका ठिकाना जो बिदत जाता था। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, इसमें क्या फर्क पड़ गया? लो मैं तो कोई नेकी का ही काम कर रही हूँ। बिदत नेकी को ही समझ के किया जाता है, बिदत को बुरा काम तो नहीं समझ के किया जाता। लेकिन इजाफा है ना, ये है इसके अंदर कबाहत। आज समझ लेंगे क्या रीजन है, क्यों इतनी बुरी इसको समझा जाता है। हम तो बड़ी अच्छी इंटेंशन से कर रहे हैं। तो अतमम तू, अल्लाह ने तमाम कर दिया खुदा के लिए, अब इसको ऐसे ही कबूल कर लो, मुकम्मल है ये। अब मेरी और आपकी जरूरत नहीं है कि हम अपनी अकल दौड़ाएं कि अब हम फलां दिन को कुछ ज्यादा सेलिब्रेट शुरू कर दें, या फलां दिन का भी हम, अब क्रिसमस आ रही है, आखिर क्रिसमस कितनी अच्छी चीज है ना। देखें अब ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे ही मना रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, हम भी मना लेते हैं, हम भी तो आखिर उनको पैगंबर मानते हैं। अतमम तो तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया है, इसमें और कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे दीन ने तो सबसे ज्यादा इन पैगंबरों को मानना है, ये तो किसी को नहीं मानते, कोई किसी को मानता और किसी को नहीं मानता, हम तो वो हैं जो सबको मानते हैं। लेकिन हमें ये नहीं कहा गया कि अब हम बर्थडे उनकी मनाने शुरू कर दें। तो अतमम तू तमाम हो गया, इसको मुकम्मल समझे, ये कंप्लीट है। ना किसी आलिम दीन को, ना किसी इमाम को, ना किसी औलिया अल्लाह को, ना मुझे और आपको, किसी को जरूरत नहीं है कि इस दीन में एडिशंस करें। आप अपनी तरफ से मनमानियां करें, अपनी तरफ से जब हम कोई चीज इसके अंदर ऐड करते हैं, तो क्या हम ये कहना चाहते हैं दीन मुकम्मल नहीं था, ये मेरी ही बात की जरूरत थी जो इसके अंदर आए? क्या कहना चाहते हैं, नहीं था मुकम्मल दीन? नहीं, जब हमने मान लिया है कि दीन मुकम्मल है, तो इसके बाद हम जुर्रत ना करें कि हम इसके अंदर और चीजें शामिल करें। वरदीतु लकुम अलइस्लाम दीना, और अल्लाह ताला ने डिक्लेयर कर दिया कयामत तक के लिए कि अल्लाह तुम्हारे से क्या चीज से को पसंद करता है, किस दीन को तुम्हारे से पसंद करता है, इस्लाम को सिर्फ। रदीतु लकुम अलइस्लाम दीना, अल्लाह ने सर्टिफिकेट दे दिया, अब के बाद कोई और दीन ऐसा नहीं है जो कोई कह सकता है कि अब कोई और दीन अल्लाह को पसंद आ गया। नहीं, अल्लाह ताला ने अब बता दिया, अब कयामत तक के लिए यही दीन है जिसको अल्लाह ताला ने अप्रूवल दे दिया। और इसीलिए हम देखें दुआएं भी जब करते हैं तो हम कहते हैं रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना, हम भी इस्लाम के दीन होने पर राजी होकर, हमने भी इस्लाम को अपनाया, हमारे लिए यही काफी है। तो ये जो आयत है, ये इसका शान नजूल ये है कि अरफा का दिन था, जो आपको पता है कि बड़ा मुबारक दिन है। तो मैदान अरफात में जबल रहमत के करीब अल्लाह ताला की का जो खास नजूल रहमत का मकाम है, असर के बाद का वक्त था, और वो भी एक मुबारक वक्त है, और जुमे का दिन था। तो उस दिन ये कहा जाता है कि बाज रिवायत में कि इस वक्त ही ये आयत नाजिल हुई थी। तो हज का सोचें वक्त है, और हज में भी अरफा का दिन ही हज का होता है। तो ये इतनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने मुकम्मल कर दिया है, और अल्लाह ने परफेक्ट कर दिया, परफेक्शन के साथ आप तक भेजा है। अब अगर कोई इंसान इसके अंदर कुछ ऐड करता है तो क्या सोचता है कि ये परफेक्ट नहीं था, मैं इसको परफेक्ट बनाऊं, ये सोचते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया ये परफेक्ट है। तो उस वक्त साहबा का बयान है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत वही के जरिए नाजिल हुई, तो इतना वही का जो बोझ था इतना महसूस हुआ कि ऊंटनी उससे दबी जा रही थी, यहां तक कि ऊंटनी बैठ गई। और अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि आयत तकरीबन कुरान की आखिरी आयात में से है, इसके बाद कोई आयत अहकाम से मुतल्लिक नाजिल नहीं हुई, ये वो उनका फरमान है। तो इसका खास एक शान इस आयत की है। तो एक दफा उलमाए यहूद हजरत उमर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि आपके कुरान में एक ऐसी आयत है, अगर यहूदियों पर नाजिल होती ना तो वो उस दिन को ईद कर लेते, जश्न मनाते उस दिन को। अगर इतनी बड़ी बात अल्लाह ताला ने फरमा दी, इतनी बड़ी यानी आपको गिफ्ट मिल गया ना, बहुत बड़ा प्राइज, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसा दीन आपको आपको बिल्कुल परफेक्ट करके दे दिया है, और कंप्लीट करके आपको दिया है, किसी और को नहीं, किसी और के दीन के अंदर ये बात नहीं आई थी। वो कहते हैं अगर हमें ऐसी आयत मिल जाती ना तो हम तो जश्न मनाते उस दिन। तो उन्होंने पूछा कौन सी आयत, तो कहते यही अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तो हजरत उमर ने जवाब दिया कि हाँ हम जानते हैं कि ये आयत किस जगह और किस दिन नाजिल हुई। तो यानी वो अरफा का दिन था और जुमे का दिन था, तो यानी हम हमारे लिए तो वो ईद का ही दिन था। और इस उनके जवाब में एक असूल की तरफ भी इशारा है, तो और वो ये है कि हर एक मुल्क में देखें, हर एक लोग अपने अपने मुताबिक कोई दिनों की यादगारें मनाते हैं, कोई दिनों को ईद बनाते हैं, कोई दिनों को करते हैं, लेकिन हम खुद से डिटरमिन नहीं करते कि कौन सी हम किसी शख्सियत की यादगार, किसी का बर्थडे, किसी का डेथ डे, किसी का या उनकी कोई ऐसी यादगारें हम बना लें और फिर हम उसको ईद का दिन बना लें, ये हम नहीं करते। हमें अल्लाह ताला ने जो ईद के दिन दिए हैं वो हम बस उनके ऊपर ईद करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इमाम कहा, इमामुल अंबिया है और अबुल अंबिया है, सॉरी अबुल अंबिया है, तो वो उनकी उनको एक उम्मत करार दिया कि पूरी उम्मत जितना काम करे उतने एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया। लेकिन आप देखें ना उनकी पैदाइश का दिन मनाया जाता है, ना उनकी मौत का दिन मनाया जाता है, ना उनके बेटे की पैदाइश का दिन मनाया जाता है। तो आप इस तरह हमारे यहां नहीं होता। हाँ जो आमाल है ना, जो चीजें दीन के मकासिद से मुतालिक हैं, उन चीजों की याद रखी जाती है। मिसाल के तौर पे सफा मरवा की में दौड़ना है, या कुर्बानी करना है, या खतना करना है, तो ये उस अमल के साथ था। लेकिन अदरवाइज किसी बड़े आदमी की डेथ या बर्थडे के साथ नहीं कुछ मनाने का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट। ठीक है, अल्लाह अकबर। तो ईसाइयों ने देखें फिर क्या गुलूव किया कि उन्होंने अपने पैगंबर के यौमे पैदाइश को ईद बना लिया, और हमारे यहाँ मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पे ईद मिलादुन नबी का नाम दे के एक और ईद बना ली कि ये भी एक ईद है। अगर इस तरह देखा जाए तो बाकी पैगंबर भी तो हैं, 1,24,000 पैगंबर जो कहा जाता है आए, तो फिर उनकी भी उनके साथ हमें कोई वो थोड़ी है, उनकी भी तो हम रिस्पेक्ट करते हैं, फिर उनके भी दिन मनाने शुरू कर दें। तो कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा पूरे साल में जिस दिन आप ना मनाएं। इसी तरह फिर एक हजरत इमाम हुसैन की शहादत का क्यों मनाया जाए, फिर हजरत उस्मान भी हैं, उनकी भी शहादत हुई और बड़ी मजलूमियत की हालत में हुई, हजरत उमर भी हैं, उनकी भी शहादत हुई, उनके क्यों नहीं मनाए जाते? और भी सहाबा हैं जिनकी शहादतें हुई, वो बड़े कबायर सहाबा में से, उनके बारे में क्या ख्याल है? तो इस तरह से हमारे यहाँ यादगारें नहीं मनाई जाती। तो इस हम वही चीज को ईद का भी दिन बनाएंगे जिसको अल्लाह ताला ने हमारे लिए ईद का दिन बनाया। क्या तो ये बहुत बड़ी एक प्राइज समझ लें, या एक बहुत बड़ी खुशखबरी, या एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा समझ लें कि जो इस फॉर्म में हमारे पास आया कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, खुशखबरी समझ लें मुसलमानों के लिए कि बस अल्लाह ने कमाल का करके, परफेक्ट करके आपको दीन दे दिया और कंप्लीट करके दे दिया, और आज से आप लोगों के लिए इस्लाम को ही दीन के तौर पे पसंद किया। कयामत के दिन अल्लाह ताला जब से इस्लाम आया उसके बाद से जितने भी इंसान आए हैं उनको अल्लाह ताला जज करेगा इस्लाम की बुनियाद पे। इस्लाम होगा तो बाकी उनके अमल देखे जाएंगे, इस्लाम ही नहीं है तो फिर उनके लिए तराजू ही नहीं कायम की जाएगी कि उनके अमाल तोले जाए। ठीक है, तो इस इस्लाम की बेस पे कयामत के दिन फैसले होंगे, और इस्लाम वे ऑफ लाइफ का नाम है। ये सिर्फ एक मुंह से बोलने की बात नहीं है कि मेरे रिलीजन के खाने में इस्लाम लिखा हो। फमनेतुर गैरा बागिन, तो वहां पे सूरह बकरा में फमनेतुर फी मखमसदिन, यहाँ पे क्या है, जो कोई मजबूर किया जाए। पीछे से ही बात कनेक्ट हो गई कि अगर कोई बहुत ही ऐसी मजबूरी की हालत में आ गया है कि जान जाने का खतरा है, फी मखमसदिन भूख में है इतनी ज्यादा, और गैरा मुतजाने के लिए इतने नहीं मायल होने वाला गुनाह की तरफ, यानी उसकी खुद नहीं कोई डिजायर नहीं अपने अंदर के मैं ये वाला गोश्त खा लूं, ये हराम खा लूं, ये ऐसे खा लूं, अब वो जी वहां की खीर आई है, वो जी फलां मिजार से आई हुई है, वहां के खाने आए हुए हैं, तो अब बड़ा दिल कर रहा है देख का पका हुआ ये फला, वो बड़ी बड़ी चीजें बांटते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं जो किस किस के नाम की होती हैं, बड़ी चटखारेदार लग रही है, तो अब बड़ा दिल कर रहा है खाने का, तो अब मजबूरी है, घर में कुछ पकाया भी नहीं हुआ तो चलो ये खा लेते हैं। नहीं ऐसे नहीं, मजबूरी ऐसी कि भूख ऐसी हो कि इंसान का मरने मर जाएगा अगर वो नहीं खाता, तब खा सकता, तब भी मायल होने वाला ना, तब भी ये ना सोचे कि अच्छा अब मौका तो मिल गया अब पेट भर के ही खा लो, नहीं उतना ही, फिर सिर्फ कि जिससे जान बचे, तो इज्तरारी हालत के लिए है सिर्फ। अब बाज लोग झटके के गोश्त को भी इज्तरारी कह देते हैं कि वो भी तो ऐसे है क्योंकि हमारी मजबूरी है ना, हमें कुछ नहीं मिल रहा, ऐसा तो नहीं है, मर तो नहीं रहे भूख से, वेजिटेरियन भी तो लोग हैं, वो लोग भी तो खाते हैं वेजिटेबल, खा के जी रहे हैं कि नहीं जी रहे, तो फिर आपने गोश्त जरूर खाना है अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे मिलता ही नहीं है, सिर्फ मुर्दार ही मिल रहा है, क्योंकि वो तो मुर्दार है, आपको कह दिया गया जो चोट लग के मरा वो भी मुर्दार है। अब कुछ लोग इसमें से निकाल लेते हैं नहीं जी अरबी लोग तो खाते हैं वो तो, तो इस क्योंकि मिस्र के एक स्कॉलर थे जिन्होंने ये फतवा इसके ऊपर दे दिया हुआ था, और बहुत सारे लोगों ने उनकी मुखालफत भी की थी, लेकिन उसके बाद से आप देख लेंगे कि ये लोग काफी हद तक उनको फॉलो करते हैं, और जब कुरान ने ये बता दिया तो फिर क्या जवाब रह गया। फइन अल्लाह गफूर रहीम, बस बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है, मेहरबान बख्शने वाले की यहाँ पे क्यों बात आई? हाँ इसलिए कि अगर कोई मजबूर हो गया ना भूख में इतना है तो हराम चीज खाना वैसे गुनाह है, लेकिन अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला, तुम उस वक्त हराम खा सकते, वो मेहरबान है, उसने ये नहीं कह दिया मर जाना लेकिन खाना ना, वो मेहरबान है, उसको पता है कि इंसान इतना मजबूर हो गया,